आज का जो पाठ है वो पुस्तक बिल्कुल सामने में एकदम रखिए और पंक्ति को देखते रहिए, फिर मेरी बात सुनिए तो समझ में आएगा। प्रश्न उठा रहे हैं कि ननु यदेव घटादियो जायन्ते तदेव तदगत रूपादयोपि इति समानकालीनत्वाद् गुणगुणिनोः सव्येतर विषाणवत् काज कारण भाव एव नास्ति पूर्वापरजा भावात् अतो न समवायि कारणं घटादयः स्वगत रूपादीनां कारण विशेषत्वात् समवायि कारणस्य। असल में पिछले पाठ में ये कहा गया था कि पट रूप के प्रति पट जो है समवायि कारण है, घट रूप के प्रति घट जो है वह समवायि कारण है, ये बताया गया था। अब आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि कारण जो है ना वह पूर्ववर्ती होता है और कार्य जो है वह पश्चादवर्ती होता है, कार्य बाद में उत्पन्न होता है और कारण पहले से रहता है। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि जब घट आदि का जन्म होगा, घटपट का जन्म होगा, उस समय में जन्म घटपट के जन्म के समय में ही घट में रूप भी उत्पन्न होगा। जब घट उत्पन्न होगा तो घट का रूप भी उत्पन्न होगा, पट उत्पन्न होगा तो पट का रूप भी उत्पन्न होगा। तो घट और घट का रूप, पट और पट का रूप, ये दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। तो जब एक साथ ही उत्पन्न होते हैं तो इसमें पूर्व भावित्व और पश्चात भावित्व तो रहेगा नहीं, माने कारण जो पूर्व में होना चाहिए और कार्य को बाद में होना चाहिए, ये जो कार्य कारण के लक्षण में बताया गया ये लक्षण यहाँ नहीं घटेगा ना, घट और घट रूप में, पट और पट रूप में। क्यों? क्योंकि दोनों समकालीन उत्पन्न होते हैं। जिस समय में घट उत्पन्न होता है उसी समय में घट में रूप भी उत्पन्न होता है, और जिस समय में पट उत्पन्न होता है उसी समय में पट का रूप भी उत्पन्न होता है। ऐसा तो है नहीं कि घट और पट जो कारण है ये पहले उत्पन्न होता है और घट में रहने वाला रूप और पट में रहने वाला रूप जो कार्य है ये पश्चात भावी है, बाद में उत्पन्न होता है। ऐसा अगर होता तब तो कार्य कारण भाव बन जाता कि पट रूप का कारण पट है और घट रूप का कारण घट है, लेकिन ये दोनों तो समकालीन उत्पन्न होते हैं, एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये कहना कि घट रूप का कारण घट है, पट रूप का कारण पट है, यह उचित नहीं है। यही प्रश्न जो है यहाँ पर तर्क भाषाकार उठा रहे हैं कि ननु यदा एव घटादयः जायन्ते, माने जिस समय में घट आदि जायन्ते उत्पन्न होता है, तदेव तदगत रूप आदयोपि, उसी समय में घट आदि का रूप आदि भी उत्पन्न होता है। इति समानकालीनत्वात्, दोनों जो हैं समानकालीन हैं, तो फिर जब समानकालीन है तो गुणगुणिनो हो, ये दोनों क्या होगा, घट और घट रूप ये दोनों क्या है, गुणगुणी है। कौन है गुण और कौन है गुणी, तो घट रूप हो गया गुण और घट हो गया गुणी, ऐसे ही पट रूप हो गया गुण और पट हो गया गुणी। तो ये जो गुण गुणी हैं, घट घट रूप, पट और पट रूप, इन दोनों में कार्य कारण भाव एव नास्ति, इन दोनों में कार्य कारण भाव ही नहीं होगा। कार्य कारण भाव का मतलब एक को कार्य कहना, दूसरे को कारण कहना, यही है कार्य कारण भाव। तो इन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। इसमें एक इन्होंने उदाहरण दिया है, सव्येतर विषाणवत, ऐसा है विषाण कहते हैं सिंह को और सव्य कहते हैं बाएं को, असव्य से इतर, इतर माने भिन्न, तो सव्य हो गया बायां, उससे इतर हो जाएगा दायां, तो सव्य इतर विषाणवत माने बायां और दायां विषाण की तरह। क्या है कि जो सिंहधारी पशु हैं उनमें जो है ना सिंह उत्पन्न होता है, तो एक साथ ही सिंह उत्पन्न होता है, बाई सिंह और दाई सिंह समकालीन उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि बाई सिंह पहले उत्पन्न हो, दाई सिंह बाद में उत्पन्न हो। तो चूंकि दोनों सिंह जो है समकालीन उत्पन्न होता है, इसीलिए बाएं सभ्य सिंह में और सभ्येतर सिंह में कार्य कारण भाव नहीं होता, क्योंकि वो पूर्वभावी और पश्चभावी नहीं है। तो जैसे सभ्येतर विषाण में, सभ्य माने बायां, सभ्येतर माने दायां, विषाण माने सिंह और वत माने तरह, जैसे बाएं और दाएं सिंह का समकालीन होने के कारण कार्य कारण भाव नहीं होता, उसी तरह से घट और घट रूप, पट और पट रूप ये जो है समकालीन उत्पन्न होता है, इसलिए इन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं होगा। अतो न पूर्वा पर्याभावात्, पूर्वा पर्य का अभाव होने के कारण, मान पूर्वा पर्य क्या होता है, पूर्व का भाव और पर का भाव, तो कारण में पूर्व का भाव रहता है और कार्य में पर का भाव रहता है, तो जहाँ पूर्वा पर्य भाव होगा वहीं पर कार्य कारण भाव होगा। ये सभ्यतर विषाण जो है इसमें पूर्वा पर्य नहीं होता, इसीलिए कार्य कारण भाव नहीं होता। ये नहीं कहते कि बाई सिंह के प्रति दाई सिंह कारण है और दाई सिंह के प्रति बाई सिंह कारण है, ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें पूर्वा पर्य नहीं है। ऐसे ही घट और घट रूप, पट और पट रूप में भी कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों, ये जो दोनों गुनगुनी हैं ये समकालीन उत्पन्न होते हैं। तो अतो न समवायि कारणम घटादयः, इसीलिए घट आदि जो है समवायि कारण नहीं होगा। स्वगत रूपादि नाम, स्व माने घट ले लीजिए तो घटगत रूपादि नाम, माने घट 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 में रहने वाले रूपादि का कारण नहीं होगा, पट पट में रहने वाले रूपादि का कारण नहीं होगा। क्यों? तो क्योंकि कारण विशेषत्वात् समवायि कारणस्य, क्योंकि समवायि कारण जो है या कारण विशेष है, और कारण विशेष मतलब कारण तीन प्रकार के होते हैं ना, समवायि कारण, असमवायि कारण और निमित्त कारण। तो समवायि कारण तो कारण विशेष है, कारण माने है, तो कारण होने के लिए पूर्वापर्ज होना जरूरी है, क्योंकि इसमें पूर्वापर्ज नहीं है घट और घट रूप में, पट और पट रूप में, इसलिए इसमें कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। ये प्रश्न किया, अब इसका जो है ना ये उत्तर देंगे। कह रहे हैं कि अत्र उच्यते, माने इस प्रश्न के ऊपर ये समाधान बताया जाता है। नौ गुण गुणिनोह समान कालीनम जन्म, गुण और गुणी का समानकालीन जन्म नहीं होता है। अब लीजिए, जब समानकालीन जन्म नहीं होगा तो पूर्वापर्ज हो जाएगा ना, उसी का विवेचन आगे करते हैं। किंतु द्रव्यम निर्गुणम एव प्रथमम उत्पद्यते, द्रव्य जो है वह निर्गुण ही पहले उत्पन्न होता है। निर्गुण मतलब बिना रूप रंग का, जैसे मान ले घट की उत्पत्ति होती है, तो घट जो पहले पहल जो उत्पन्न होगा उस समय में उसमें कोई गुण नहीं रहेगा, कोई रूप नहीं रहेगा, कोई गुण धर्म नहीं रहेगा। वही कहते हैं कि द्रव्यम निर्गुणम एव प्रथमम उत्पद्यते, पश्चात तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ति, और बाद में जो है ना, जैसे मान लो प्रथम क्षण में द्रव्य जो है निर्गुण उत्पन्न होगा, और पश्चात माने द्वितीय क्षण में जा करके तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते, मान उसमें समवाय संबंध से जो है रूप आदि गुण की उत्पत्ति होती है। समान काल उत्पत्तो तो गुण गुणिनोह समान सामग्री कत्वाद भेदो न स्यात्। कि आप ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों नहीं आप द्रव्य को सगुण ही उत्पन्न मानते हैं, आप निर्गुण उत्पन्न मानते हैं, कहते हैं कि प्रथम क्षण में द्रव्य निर्गुण उत्पन्न होता है और द्वितीय क्षण में जाकर के उसमें गुण उत्पन्न होता है, ऐसा आप क्यों मानते हैं? ताकि इसके मानने के पीछे राज है, रहस्य है। क्या? तो समान काल उत्पत्तो तु, अगर हम दोनों को समानकालिक उत्पत्ति मान लें, माने द्रव्य और द्रव्य में रहने वाला गुण, इन दोनों को अगर हम समानकालीन उत्पन्न मान लेंगे तो क्या होगा? गुण गुणिनो समान सामग्री कत्वात्, फिर गुण और गुणी की कारण सामग्री जो है वह समान ही होगी, और समान अगर गुण कारण सामग्री होगी तो भेदो न स्यात्, तो फिर जो है ना क्या होगा कि इसमें भेद नहीं हो पाएगा। माने गुण और गुणी, गुण अलग चीज है और गुणी अलग चीज है, यह जो भेद है या जो भिन्नता है यह भिन्नता नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्य का भेद कब होता है? कारण के भेद के आधार पर। और जब समानकालीन उत्पत्ति मान लेंगे तो कारण दोनों का समान हो जाएगा, तो फिर वह गुण और गुणी दोनों समान कहलाने लगेंगे, जबकि हैं दोनों भिन्न। तो गुण और गुणी में भेद रहे, गुण और गुणी भिन्न भिन्न कहलावे, इसलिए उसको हम समानकालीन उत्पत्ति नहीं मानते। आगे कहते हैं कि कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेदस्य, कि जब कारण में भेद निश्चित रहता है तभी कार्य में भेद रहता है। तो जब हम समानकालीन उत्पत्ति मानेंगे तो कारण में भेद नहीं रहेगा, तो कार्य में भी भेद नहीं होगा, इसीलिए इसको जो है प्रथम क्षण में निर्गुण ही उत्पन्न माना जाता है। तस्मात प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घटः उत्पद्यते। ठीक है, इसलिए प्रथम क्षण क्यों, इसलिए मतलब क्या कि कार्य भेद होने के लिए हैं, प्रथम क्षण में निर्गुण ही घट को उत्पन्न माना जाता है। गुणेभ्य पूर्व भावी इति भवति गुणानाम समवायी कारणम। तो प्रथम क्षण में जब निर्गुण घट उत्पन्न होगा और द्वितीय क्षण में गुण की उत्पत्ति होगी, माने उसमें रहने वाले रूप रंग की उत्पत्ति होगी, तो प्रथम क्षण में उत्पन्न होने वाला जो घट है वो पूर्व भावी हो गया ना, तो पूर्व भावी हो गया तो वो कारण माना जाएगा। वे कहते हैं कि तस्मात प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घटः उत्पद्यते। प्रथम क्षण में निर्गुण ही घट उत्पन्न होता है। गुणेभ्य पूर्व भावी, गुण से वह पूर्व भावी हो गया फिर घट, गुण मतलब रूप रसादि, तो गुण से पहले उत्पन्न हो गया तो गुणानाम समवायी कारणम, तो वह समवायी कारण बन सकता है। क्योंकि इन्होंने यही प्रश्न खड़ा किया था ना कि दोनों समकालीन उत्पन्न होता है, पूर्व भावी नहीं रहता है घट और पट, तो कैसे समवायी कारण होगा। इसका इन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, समकालीन उत्पन्न नहीं होता, पहले द्रव्य उत्पन्न होता है निर्गुण ही रहता है, बाद में द्वितीय क्षण में जाकर के उसमें गुण उत्पन्न होता है, तो वह जो घट है निर्गुण घट प्रथम क्षण वाला वह पूर्व भावी हो गया, और गुण जो है रूप वह जो है पश्चात भावी हो गया, मतलब वो कार्य हो जाएगा, तो इस तरह से उसमें कार्य कारण भाव हो सकता है। तदा कारण भेदोपी अस्ति, कहा कि जब हम इस तरह से मान लेते हैं कि पहले निर्गुण द्रव्य होता है बाद में गुण उत्पन्न होता है, तो फिर उसमें कारण भेद भी हो जाएगा, और कारण भेद होगा तो कार्य भेद भी होगा। वही कहते हैं तदा कारण भेद अपि अस्ति, घटो ही घटम प्रति न कारणम, कहा कि घट के प्रति घट कारण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि घट के प्रति घट कारण कैसे बनेगा, उसमें पूर्वापर्ज नहीं रहेगा, जहाँ पूर्वापर्ज होगा वहीं जो है कारण होता है। नहीं स्व एव तमेव प्रति पूर्व भावी पश्चात भावी च, घट के प्रति घट जो है कारण क्यों नहीं होगा, क्योंकि वही घट जो है पूर्व भावी भी होगा और घट जो है पश्चात भावी भी होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गुणान प्रति तो पूर्व भावित्वाद भवति गुणानाम समवायी कारणम। इस तरह से गुण के प्रति माने रूप के प्रति ये जो घट आदि द्रव्य है वह पूर्व भावी हो जाता है, और पूर्व भावी होने का के कारण वह समवायी कारण कहला सकता है। इस तरह से इन्होंने जो प्रश्न उत्पन्न किया उसका इन्होंने समाधान किया। अब फिर प्रश्न करते हैं कि ननु एवं सति प्रथमे क्षणे घटः अचाक्षुषः स्यात्, कहा कि आपने क्या कहा कि प्रथम क्षण में घट निर्गुण ही उत्पन्न होगा, तो निर्गुण उत्पन्न होगा। अच्छा, चाक्षुष प्रत्यक्ष माने आँख से जिसका प्रत्यक्ष होता है ना उसको चाक्षुष कहते हैं। चक्षुष माने आँख, और चक्षुष से होने वाला जो प्रत्यक्ष है उसको चाक्षुष कहा जाता है। ताकि जब प्रथम क्षण में निर्गुण घट उत्पन्न होगा, उसमें कोई रूप रंग रहेगा ही नहीं, ना रूप रहेगा ना आकार रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, तो वह अचाक्षुष हो जाएगा, माने उसको हम चक्षुष के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो यह दोष हुआ ना। जबकि द्रव्य जो है उसका चाक्षुष होता है, उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, आपने जब उसको निर्गुण मान लिया प्रथम क्षण में, तो वह उसमें चाक्षुषत्व की आपत्ति आ जाएगी, माने चक्षुष से उसको हम नहीं देख पाएंगे। अरूपी द्रव्यत्वात् वायुवत्, कहा कि कैसे नहीं देख पाएंगे, तो जैसे वायु जो है अरूपी द्रव्य है, माने वायु में रूप नहीं होता, कोई पूछे कि हवा का कलर क्या होता है तो बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वायु जो है अरूपी है, माने वायु में कोई रूप नहीं होता, और तो जैसे अरूपी द्रव्य वायु है और उस वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसे ही अरूपी जो घट है प्रथम क्षण वाला उसमें भी चाक्षुषत्व हो जाएगा, उसको हम चक्षु से नहीं देख पाएंगे। तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम, कहा कि वही द्रव्य उसी द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, मान उसी द्रव्य को हम आँख से देख पाते हैं। यन महत्वे सति उद्भूत रूपवत्, कहा कि जिसमें महत्व हो और उद्भूत रूपत्व हो। ये क्या होता है महत्व? महत्व माने वह बड़ा साइज में हो, और उद्भूत रूप मतलब एकदम से वह दिखने वाले स्थिति में हो, अंधेरे में न हो। अब जैसे कोई चीज अंधेरे में रखी हुई है तो उस चीज़ को होते हुए भी हम नहीं देख पाते, क्योंकि वो उसमें उद्भूत रूप नहीं है, और वहीं जब लाइट आ जाती है तो उसका रूप उद्भूत हो जाता है, देखने के योग्य हो जाता है। और महत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीज़ होती है जिसको हम दूरबीन से देख पाते हैं, कई चीजें ऐसी भी है इतनी सूक्ष्म जिसको दूरबीन से भी नहीं देख पाते हैं। तो दिखने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो महत्व होना जरूरी है, महत्व माने बड़ा होना, और उद्भूत रूप होना माने रूप दर्शनीय रूप होना, दर्शन के योग्य उसका रूप होना। तो ये दोनों चीजें जो है प्रथम क्षण वाला जो घट है उसमें तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपने क्या किया उसको अरूपी मान लिया, ताकि वो निर्गुण ही उत्पन्न होता है तो उसमें अक्षाक्ष सत्व की आपत्ति आएगी। अद्रव्यंच स्यात्, ताकि इतना ही नहीं है वह जो घटपट आदि है प्रथम क्षण वाला उसको आप द्रव्य भी नहीं कह पाएंगे, अद्रव्यम च स्यात्, वह अद्रव्य बन जाएगा। क्यों? ताकि गुणाश्रयत्वाभावार्थ, ताकि द्रव्य उसको कहते हैं जो गुण का आश्रय हो। द्रव्य का लक्षण ही है गुणाश्रयो द्रव्यम, माने गुण का जो आश्रय होता है वह द्रव्य कहलाता है। मैंने बताया हुआ है कि रूप रस सब जो है वह गुण कहलाता है, तो रूप का जो आश्रय होगा, रूप रूपी गुण का जो आश्रय होगा वह द्रव्य कहलाएगा। तो चूंकि प्रथम क्षण वाला जो घट है उसमें रूप रहता नहीं है, वह रूप का आश्रय है नहीं, तो वह द्रव्य भी नहीं कहलाएगा। गुणाश्रयो द्रव्यम इति ही द्रव्य लक्षणम, क्योंकि द्रव्य का लक्षण प्रथम क्षण वाले घट में जाएगा नहीं। इस तरह से इन्होंने दो दोष दिए, एक तो कहा कि अगर आप निर्गुण उत्पन्न मानेंगे प्रथम क्षण में तो उसमें अचाक्षुषत्व होगा, माने चक्षुष के द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाएगा। दूसरा दोष दिया कि उसमें अद्रव्यत्वापत्ति आएगी, माने वह द्रव्य नहीं कहलाएगा, जबकि वह द्रव्य कहलाता है और उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष भी होता है, लेकिन आपके सिद्धांत को मानने पर ये दोनों आपत्ति आएगी। अब यहाँ फिर से एक चीज जान लीजिए कि चाक्षुषत्व किसका होता है, माने चक्षुष के द्वारा किसको हम देख पाते हैं, यन महत्वे सति उद्भूत रूपवत्, जिसमें महत्व भी महत्व हो और उद्भूत रूप भी हो, माने बड़ा भी हो और उसका रूप दर्शन के योग्य भी हो, वह अंधेरा में छुपा न हो। तो इस तरह से आपत्ति जो है किसी पूर्व पक्षी ने दिया, तो उसका अब उत्तर इन्होंने दिया कि सत्यम, कहा कि आपकी आपत्ति अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृजते तदा कानो हानि, कहा कि अगर प्रथम क्षण में मान लीजिए कि घड़ा नहीं भी दिखता है, चक्षु से ग्रहण नहीं भी होता है, तदा कानो हानि, तो अपनी क्या इसमें हानि क्या है, द्वितीय क्षण से तो वह दिखता ही है ना। तो इस तरह से और भी इसमें बातें हैं जिसको कि आज नहीं पूरा कर पाएंगे, इसको अगले पाठ में करेंगे, आज यहीं रखते हैं।